ओम शांति। 9th जनवरी 2020 अव्यक्त मास। आज का विशेष पुरुषार्थ मन की एकाग्रता सहज ही एक रस स्थिति का अनुभव कराएगी। एकाग्रता की शक्ति द्वारा अव्यक्त फरिश्ता स्थिति का अनुभव कर सकेंगे। इसके लिए जब चाहो, जहां चाहो, जितना समय चाहो, मन को वहां एकाग्र कर सको। मन आपके बस में हो। तो आज के पुरुषार्थ में विशेषकर बाबा मन की एकाग्रता के बारे में कह रहे हैं, क्योंकि मन की एकाग्रता से बहुत सारे फायदे होते हैं। इस ब्राह्मण जीवन में आप हम सभी तीव्र पुरुषार्थ कर तीव्र गति से आगे बढ़ने का लक्ष्य रखकर चल रहे हैं, और उस तीव्र पुरुषार्थ में, उस लक्ष्य में सफलता हासिल कर सकें, इसके लिए एकाग्रता का होना बहुत जरूरी है। जहां एकाग्रता है, वहां जीवन में सफलता ही सफलता है, और जहां एकाग्रता का अभाव है, वहां जीवन में समस्याएं ही समस्याएं हैं। तो एकाग्रता के लिए जो आत्मा की मूलभूत तीन शक्तियां हैं, मन, बुद्धि और संस्कार, तीनों का अपना अपना एक विशेष विशेषता है, विशेष कार्य क्षेत्र है। तो बाबा आज विशेष मन के ऊपर कह रहे हैं कि अपने मन को, अपने मन की एकाग्रता को बढ़ाओ। मन की एकाग्रता से विशेष क्या क्या फायदे हैं, उसमें दो फायदे बाबा ने आज गिनाए। वो दो फायदे कौन कौन से हैं? एक रस स्थिति का अनुभव होगा, मन की एकाग्रता से एक रस स्थिति का अनुभव होगा, और दूसरा दूसरा फायदा अव्यक्त फरिश्ता स्थिति का अनुभव कर सकेंगे। इसके लिए आपके पास मन को कंट्रोल करने की शक्ति हो कि जब चाहें, जहां चाहें, जितना समय आप चाहें, मन को वहां पर एकाग्र कर सकें। तो जैसे बाबा ने आज के मुरली में, आज के होमवर्क में ये दो फायदे गिनाए, उसी प्रकार से हम देखेंगे कि मन की एकाग्रता से इस ब्राह्मण जीवन में हमें कौन कौन से फायदे होते हैं। तो सबसे पहली बात है कि जहां मन की एकाग्रता है, वहां सहज ही सर्व सिद्धियों की प्राप्ति होती है। हम जीवन में सिद्धि स्वरूप बनना चाहते हैं, हमारा लक्ष्य है कि जीवन में हम सिद्धि स्वरूप बनकर के रहें, हर कार्य में हमको सिद्धि मिले, कम समय, कम खर्चा, कम मेहनत में सफलता अधिक मिले। उसके लिए जरूरी है कि हमारा जो मन हो वो एकाग्र हो, मन की एकाग्रता उसके लिए आवश्यक है। अगली बात है, हम मन की एकाग्रता से तीनों लोकों की सैर कर सकते हैं। बाबा कहते तीनों लोकों की सैर करो, जब चाहो तब मूल वतन में पहुंच जाओ, जब चाहो तब सूक्ष्म वतन में पहुंच जाओ, और जब चाहो तब ये साकार वतन में आ जाओ। तो तीनों लोकों की सैर करने के लिए मन की एकाग्रता होना आवश्यक है। अगला फायदा है सूक्ष्म वतन के अलौकिक अनुभव, जो अनुभव हैं, उन अनुभवों को महसूस करने के लिए एकाग्रता की शक्ति चाहिए। वर्तमान संगम युग के समय में अव्यक्त बाप दादा सूक्ष्म वतन में बच्चों को इनवाइट करते हैं, आह्वान करते हैं कि सूक्ष्म वतन में आकर के अलौकिक अनुभूतियां करो। तो सूक्ष्म तन के अलौकिक अनुभूतियां करने के लिए भी मन की एकाग्रता होना जरूरी है। इसके साथ साथ यदि बाबा कहते हैं कि संसार की आत्माओं को सकाश देना है, तो संसार की आत्माओं को सकाश देने के लिए उसके लिए भी एकाग्रता होना आवश्यक है। संसार की आत्माओं को, आत्माओं का आह्वान करने के लिए, संसार में जो आत्माएं दुखी हैं, परेशान हैं, अशांत हैं, टेंशन में हैं, उन आत्माओं का आह्वान करने के लिए कि वो आत्माएं बाप के पास आएं और आकर के अपनी समस्याओं को सॉल्व करें और बाप से अपना जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त करें, उसके लिए एकाग्रता चाहिए। एकाग्रता के माध्यम से ही संसार की जो परेशान आत्माएं हैं उनका आह्वान कर सकते हैं। एकाग्रता की शक्ति के माध्यम से ही संसार में जो दूर बैठी हुई आत्माएं हैं, हम उन आत्माओं के पास जाकर के जो उनकी मनोकामनाएं हैं उनको वहां जाकर के पूर्ण कर सकते हैं। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे फायदे हैं। क्या क्या फायदे होंगे? हाँ जी, व्यर्थ से बच जाएंगे और उससे हमारी ग्रहण शक्ति बढ़ती है। एकाग्रता से ग्रहण शक्ति बढ़ती है, सेवा में सफलता मिलती है। अच्छा, और हाँ जी, हाँ, एकाग्रता है तो हम उस एकाग्रता के माध्यम से जो हमारे शक्तियां हैं, जो गुण हैं, उनका हम आह्वान कर सकते हैं। बाबा ने एक अव्यक्त मुरली में कहा कि अपने संपूर्ण स्वरूप का आह्वान करो, आपके अपने शक्तियों का आह्वान करो, गुणों का आह्वान करो जो आपके अपने हैं, तो एकाग्रता होगी तो उनको हम आह्वान कर सकेंगे। एकाग्रता जहां है वहां परखने की शक्ति बढ़ती है, निर्णय शक्ति बढ़ती है, बीज रूप अवस्था आएगी। एकाग्रता है तो उसे अत्यंत सुख की अनुभूति होगी, निर्विघ्न बनेगी। एक अव्यक्त मुरली बाबा ने कहा कि जहां एकाग्रता है वहां पर आपकी स्थिति निर्विघ्न है, युद्ध नहीं करनी पड़ेगी, सहज ही सफलता मिलेगी। सेल्फ चेकिंग तो एकाग्रता की शक्ति से बहुत सारे फायदे हैं, जिनको आप हम सब उन फायदों का अनुभव भी कर रहे हैं। बाबा ने कहा कि जहां एकाग्रता है वहां एक बाप दूसरा ना कोई ये अनुभव होगा, एक बाप के साथ सर्व संबंधों का अनुभव आप कर सकेंगे। और दूसरों के लिए स्नेह कल्याण की वृत्ति सहज होगी, क्योंकि एकाग्रता माना स्वमान की स्थिति, जहां एकाग्रता है वहां स्वमान की स्थिति है। हाँ जी, मुरली भी याद रहेगी, जो हम सबका डेली का पुरुषार्थ है कि मुरली के पॉइंट्स को याद करें, तो उसके लिए पहले पहले हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी एकाग्रता को बढ़ाना पड़ेगा। तो जहां एकाग्रता है वहां कोई भी कार्य करने में हमें डिफिकल्टी अनुभव नहीं होगी, सहज ही हमारे हर कार्य में सफलता हासिल कर सकेंगे। तो एकाग्रता की शक्ति से इस ब्राह्मण जीवन में बहुत सारे फायदे हैं, इसलिए बाबा कहते हैं कि अपनी एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ। एकाग्रता आपकी इतनी हो जो आप जब चाहो, जहां चाहो, जितना समय चाहो मन को वहां पर एकाग्र कर सको, अर्थात मन आपके कंट्रोल में हो। तो एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाने के लिए कौन कौन से ऐसे साधन हैं, विधियां हैं, जिनसे हमारी एकाग्रता दिन प्रतिदिन बढ़ती रहे? तो सबसे पहली बात है, उसके लिए पहले हमें जो मन का स्वभाव है उसको जानना आवश्यक है। तो एकाग्रता को बढ़ाने के लिए हमें मन के स्वभाव को जानना आवश्यक है। मन का क्या स्वभाव है, मन की नेचर क्या है? हमेशा कुछ ना कुछ सोचना है, अर्थात उसे कोई ना कोई कार्य चाहिए, वो कभी भी खाली बैठना नहीं चाहता है। और हाँ जी, बचपना है, एक बच्चे की तरह है, मन बहुत तेज है, कितना तेज है, जिन्न की तरह। तो मन की पहली जो विशेषता है, खूबी है, नेचर है, स्वभाव है, वो है कि मन एक बच्चे की तरह है। या छोटा बच्चा है, उसको कहीं भी खेलने के लिए छोड़ दिया जाए तो बच्चा क्या करता है? शरारत करेगा, वहां जो कुछ भी पड़ा होगा उसको उसी से खेलेगा। अब वहां जो कुछ भी है उससे वो उसके योग्य है, उसके लिए उचित है, अनुचित है, उसको उसके बारे में कोई भी बोध नहीं, एहसास नहीं है। वहां कोई खिलौना है या कोई चाकू है, नुकसान वाली चीज है या फायदे वाली चीज है, उससे उसको कोई भी लेना देना नहीं है, उसको खेलना है। या कोई भी खाने की चीज है, मिठाई है या कोई भी चीज है, नुकसान वाली चीज है, वो उसको उठा करके खा लेगा, चाहे मिठाई हो या फिर मिट्टी का कोई भी टुकड़ा हो, उसको खाने से मतलब है। तो हमारे मन की भी ऐसी ही नेचर है, स्वभाव है कि उसे कुछ ना कुछ चाहिए। तो हाँ, तो मन की विशेषता है कि वो उसमें बहुत सारी क्रिएटिविटी है। तो मन भी हमारा ऐसा ही करता है कि उसको कुछ ना कुछ चाहिए, खेलने के लिए, कुछ खाने के लिए, कोई काम, उसका कोई काम चाहिए। यदि उसको हम कोई काम नहीं देंगे, उसके उसका जो भोजन है उसको यदि हम नहीं देंगे, तो वो अपना भोजन स्वयं ढूंढ लेगा, और उससे फिर क्या होगा, हमारा स्वयं का नुकसान होगा। दूसरी बात है, मन एक जिन्न की तरह है जो कभी भी खाली नहीं बैठता, उसको हमेशा कोई ना कोई काम चाहिए। जिन्न क्या कहता अपने मालिक से, जी हजूर, मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूं, हाजिर हूं, मुझे काम दो, मुझे काम नहीं दोगे तो मैं आपको खा जाऊंगा, अर्थात मुझे काम चाहिए। तो ऐसा ही हमारा जो मन है उसकी भी यही विशेषता है कि उसको हमेशा कोई ना कोई काम चाहिए, वो कभी भी खाली बैठना पसंद नहीं करता है। तो अपने मन को हम स्वयं काम नहीं देंगे, उसको किसी कार्य में स्वयं इन्वॉल्व नहीं करेंगे, तो मन अपना काम, कुछ और काम खुद ढूंढ लेगा, और वो ऐसा कार्य ढूंढेगा जिस कार्य से हमारे लिए मुसीबत खड़ी हो। इसके लिए हमें चाहिए कि अपने मन को हम स्वयं कार्य दें, उसको कोई ना कोई कार्य में बिजी रखें, उसको इतना बिजी कर दें कि वो उससे वो फ्री ना हो सके। बाबा क्या कहते हैं, अपने मन को इतना बिजी कर दो कि मन कभी भी खाली ना हो। उसके लिए बाबा ने कौन सी सीढ़ी बताई हुई है, जाना और आना, मन को जो काम दे दो कि ऊपर जाओ और नीचे आओ, बाप के पास जाना, बाप से मिलना, शक्ति भरना और फिर नीचे आना। तो जाना और आना, ये मन को काम दे दो तो आपको तंग नहीं करेगा। तीसरी बात है, मन एक बेलगाम घोड़े की तरह है। जैसे घोड़े पर लगाम ना हो तो क्या करेगा, वो कहीं का कहीं आपको ले जाएगा। और यदि घोड़े पर लगाम लगाएंगे तो जहां आप चाहेंगे वहां वो आपको ले जाएगा, क्योंकि मन की अपनी कोई बुद्धि नहीं है, मन का अपना कोई लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य मालिक का है। तो मन रूपी घोड़े को लगाम लगा करके क्या करना है, हमें अपने मंजिल को हासिल करनी है। तो ये मन की कुछ आदतें हैं जिनको हमें जानना आवश्यक है, और फिर उसी अनुसार मन को हमें कार्य में लगाना है। तो सबसे पहली बात क्या थी कि मन के स्वभाव को जानना। मन एक बंदर की तरह भी है जो हमेशा उछल कूद करता रहता है, चंचल है, यहां से वहां भागता रहता है, कभी पास्ट में तो कभी भविष्य में, वर्तमान में स्थिर नहीं रहता है, कभी बीती हुई बातों में पहुंच जाएगा और वहां की बातों को सोचेगा, और कभी तो भविष्य की बातों को उल्टा केला खाता है, कैसे, बिना छीले। और दूसरी बात है, मन की शक्ति को बढ़ाने के लिए, मन की एकाग्रता के लिए कि हमें अपने लक्ष्य को मजबूत बनाना है, लक्ष्य मजबूत हो, लक्ष्य इतना मजबूत हो जो मन हमेशा उसमें इन्वॉल्व रहे। इस संगम युग के अनमोल समय में बाबा ने हम सभी को होलसेल में जो लक्ष्य दिया हुआ है कि आपको क्या बनना है, लक्ष्मी नारायण बनना है, विश्व का मालिक बनना है, फरिश्ता बनना है, कर्मातीत बनना है, ये हमारे पूरे जीवन का लक्ष्य है। लेकिन इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए हमें छोटे छोटे लक्ष्य को रखना पड़ेगा। जैसे अव्यक्त मास में लक्ष्य रखा हुआ है कि हम इस अव्यक्त मास में अव्यक्त विशेष पुरुषार्थ करके अपनी स्थिति को आगे ले जाना है। तो मन की एकाग्रता के लिए हमारा लक्ष्य बहुत मजबूत हो, एक वर्ष का भी लक्ष्य हो, एक मास का भी लक्ष्य हो, एक सप्ताह के लिए भी लक्ष्य हो, और डेली का भी लक्ष्य हो कि डेली हमें क्या क्या कार्य करना है। तो जब हम मन को कोई लक्ष्य देंगे तो मन फिर उसी अनुसार चलेगा, क्योंकि मन को कोई ना कोई कार्य चाहिए। अगले पॉइंट है, थर्ड पॉइंट, अंतर्मुखता। अंतर्मुखता की गुफा में मन को बिठाना है। जैसे दुनिया में जो भी साधना करते हैं वो क्या लक्ष्य रखते हैं कि एकांत में जाकर के गुफाओं में जाकर तपस्या करें, क्योंकि गुफाओं में बाहर की दुनिया का वातावरण नहीं होता है, बाहर की दुनिया के वातावरण से वो सेफ रहते हैं। तो इसी प्रकार से हमें अपनी एकाग्रता को बढ़ाने के लिए, एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाने के लिए अंतर्मुखता की गुफा में बैठना आवश्यक है। तो बाबा ने जो हमें अंतर्मुखता की गुफा दी हुई है, यह गुफा कोई छोटी नहीं है, यह तो एक बहुत विशाल गुफा है, इसमें पूरा संसार समाया हुआ है। इस गुफा के अंदर जाएंगे तो इस गुफा के अंदर एक रूहानी संसार, अलौकिक संसार समाया हुआ है, लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, उस गुफा के अंदर एंटर करना पड़ेगा। तो एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाने के लिए अंतर्मुखता की गुफा में रह करके हमें पुरुषार्थ करना है या रहने का अभ्यास करना है। अगले पॉइंट है अलौकिक अनुभूतियां। मन की एक विशेषता है कि उसको हमेशा कोई ना कोई अनुभव चाहिए, उसको खुशी चाहिए। तो बाबा ने एक अव्यक्त मुरली में विदेशियों से मुलाकात में कहा था कि इस ब्राह्मण जीवन में जो बाप आप बच्चों को पुरुषार्थ का मार्ग दिखाते हैं, ये बहुत ही सहज मार्ग है। और वो ये मार्ग सहज क्यों है, उसके लिए बाबा ने कई बातें बताई थी। बाबा ने उसमें एक बात कही थी कि ये सहज मार्ग इसलिए है क्योंकि ये अनुभूतियों का मार्ग है। इस मार्ग में अनुभव है, संसार में जो लोग साधना करते हैं वहां उनको अनुभव नहीं होता है, इसलिए उनका मन भटकता है। तो बाबा कहते हैं ये अनुभूतियों का मार्ग है, इसलिए ये सहज मार्ग है। तो एकाग्रता को बढ़ाने के लिए अनुभव करना, अनुभूतियों में मन को बिजी रखना, अलौकिक अनुभूतियां, अनुभूतियों के लिए एकाग्रता चाहिए, ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंड है। एक बार कोई अनुभूति होगी तो एकाग्रता सोते आ जाएगी, और जहां एकाग्रता है वहां अनुभूति बढ़ती रहेगी। तो एकाग्रता के लिए, और हर एक को कोई ना कोई अनुभूति तो होती ही है, तो जो भी हम अनुभव करते हैं या बाबा ने जो हमें ब्राह्मण जीवन में खजाने दिए हुए हैं, जो गुण हैं, शक्तियां हैं, यदि हम उनका अनुभव करेंगे, गुणों का अनुभव करेंगे, शक्तियों का अनुभव करेंगे, तो उस अनुभव के आधार से मन स्वतः ही एकाग्र रहेगा। तो मन की एकाग्रता के लिए अनुभूतियों का होना या अनुभूतियां करना आवश्यक है। इसके साथ साथ मन की एकाग्रता के लिए बेहद का वैराग्य चाहिए, क्योंकि हमारा मन आधा कल्प से संसार में भटकता रहा है। संसार में जो व्यक्ति हैं, वस्तु हैं, वैभव हैं, संसार में जो बहुत सारे साधन हैं, प्रलोभन हैं, उनमें मन भटकता रहा, तो मन को भटकने की वो अभी भी आदत है। तो जो मन आधा कल्प से भटकता रहा उसको अभी एकाग्र करना है। तो जिन जिन बातों के प्रति मन भटकता रहा उन बातों से मन को अभी वैराग दिलाना है। ये संसार वर्तमान समय जो है वो संसार कैसा है, छीछी है, आसार है, इसमें कोई सार नहीं है, कोई रस नहीं है। जिन बातों के लिए मन संसार में जा रहा है, यदि वहां से कोई खुशी प्राप्त हो भी रही है, सुख मिल भी रहा है, तो वो टेम्परेरी है, अल्पकालीन है, अभी अभी है, थोड़े समय के बाद वो दुख में बदल जाएगा। जिन बातों से खुशी मिल रही है वही बातें बाद में दुख का अनुभव कराएंगे। तो संसार से वैराग्य, तो मन की एकाग्रता के लिए संसार से वैराग्य होना जरूरी है। अगले पॉइंट है एक्सरसाइज। इस ब्राह्मण जीवन में बाबा कहते हैं कि आपको तन की एक्सरसाइज भी करनी है और मन की एक्सरसाइज भी करनी है। ये दोनों एक्सरसाइज इस ब्राह्मण जीवन में आवश्यक हैं। तो मन की एक्सरसाइज तो हम सब करते हैं, डेली करते हैं। जो बाबा ने हमें मन की एक्सरसाइज के लिए बहुत सारी विधियां बताई हुई हैं, उनको हम अप्लाई तो करते हैं। जैसे बाबा कहते हैं कि 5 स्वरूपों का अभ्यास करो, 3 स्वरूपों का अभ्यास करो, या और जो भी बाबा ने विधि बताई हुई है, जो भी ड्रिल्स हैं, उनका तो अनुभव हम करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ तन की एक्सरसाइज भी आवश्यक है। क्योंकि शक्तिशाली स्वस्थ तन में ही एक शक्तिशाली मन का वास हो सकता है। क्योंकि अगर शरीर बार बार बीमार पड़ रहा है, शरीर में बार बार कोई ना कोई बीमारियां, कोई ना कोई रोग पैदा हो रहा है, तो हमारे मन को वो विचलित करता रहेगा, मन की एकाग्रता नहीं हो सकेगी। हो सकता है थोड़े समय के लिए हम उसमें सफल भी हो सकते हैं। जैसे अव्यक्त मास है, तो इस अव्यक्त मास में हम कोई भी फिजिकल एक्सरसाइज न करके केवल हमारा लक्ष्य हो कि अव्यक्त मास में केवल जो हमारा मानसिक एक्सरसाइज है, जो मन की एक्सरसाइज है, उसको हम कर सकते हैं। लेकिन लंबे समय तक, साल भर या कई साल तक ये कंटिन्यू जारी हम नहीं रख सकते हैं। क्योंकि अगर हम केवल मन की एक्सरसाइज करते हैं, तन की एक्सरसाइज नहीं करते, तो जब तन में कोई भी प्रॉब्लम होगी तो उसमें हमारा मन अपसेट हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। इसलिए तन और मन दोनों की एक्सरसाइज करना आवश्यक है। तो जब हम दोनों एक्सरसाइज करेंगे तो इससे हमारा मन शक्तिशाली रहेगा और मन की एकाग्रता बढ़ती रहेगी। जिसके लिए जिसको जो पॉसिबल हो, जिसके लिए जो सहज हो, चाहे तो वॉकिंग कर सकते हैं, या जो भी प्राणायाम है, योगासन है, वो कर सकते हैं, या कोई भी खेल है, बैडमिंटन है, जो भी खेल है, यदि किसी के पास समय है तो वो भी, उसको भी आप अप्लाई कर सकते हैं। मना आपको कुछ ना कुछ करना ही है, चाहे आप वॉकिंग करें, चाहे आप प्राणायाम करें, या फिर कोई भी खेल कूद में भाग लें। कुछ ना कुछ आपको फिजिकल एक्टिविटी में भाग लेना है, आपको कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल जो हमारी फिजिकल एक्टिविटी उसमें भाग लेना है। तो जिसके लिए जो भी पॉसिबल है, जो भी कर सकता है उसके लिए आवश्यक है, लेकिन करना जरूरी है। जो भी हो सकता है, कभी योगासन, कभी वॉकिंग, कभी खेल कूद, इससे मन एक्टिव रहता है, अलर्ट रहता है। नहीं तो मन बाद में सुस्त हो जाता है। अगर लंबे समय तक हम कोई भी एक्टिविटी नहीं करते हैं, केवल योग पर हमारा ध्यान है, तो कुछ समय तो अच्छा अनुभव होगा, बाद में मन डल हो जाएगा, आगे कुछ करने का उसकी इच्छा नहीं होगी। इसलिए दोनों एक्सरसाइज करना जरूरी है। इसके अलावा और भी बहुत सारी विधियां हैं। कौन कौन सी विधि होंगी? और जैसे कि ब्राह्मण परिवार में हमने देखा है कि कईयों की ऐसी आदत है, नेचर है, स्वभाव है, कि कोई कोई डेली की मुरली पर रोज ड्रिल बनाते हैं, डेली की मुरली से ड्रिल बनाना। तो डेली की मुरली से ड्रिल बनाना, इससे भी हमारी एकाग्रता बढ़ती है। तो एकाग्रता के लिए हम ये विधि भी अप्लाई कर सकते हैं कि रोज की मुरली से, या कोई कविता लिखें, या उस पर कोई ड्रिल बनाएं, या उस पर कोई गीत लिखें, या फिर कोई चित्र बनाएं। जैसे हमारे निखिलेश भाई डेली की मुरली पर एक चित्र बनाते हैं, तो इससे हमारी एकाग्रता बढ़ेगी। तो ये भी एक विधि है कि इससे हमारी एकाग्रता को हम बढ़ा सकते हैं। और चिंतन, एकाग्रता के लिए चिंतन आवश्यक है, इसलिए बाबा कहते हैं कि डेली की मुरली से कोई ना कोई पॉइंट्स को नोट करके उस पर आप चिंतन करो। चिंतन करेंगे तो उससे हमारा मन एकाग्र होगा और हमारे में वो एकाग्रता का बल जमा होगा। नए पॉइंट्स को निकाल करके उस पर चिंतन करना है, सिर्फ पॉइंट्स नहीं निकालना है लेकिन पॉइंट्स पर चिंतन करना है। इसके साथ साथ क्रिएटिविटी, जीवन में कोई ना कोई क्रिएटिविटी होनी चाहिए। हम लंबे समय तक जिस कार्य को करते हैं, यदि हम उसी रूप में उसी तरीके से उसी विधि से वो कार्य करते रहते हैं तो हमारा मन बाद में डल हो जाता है, मन को कुछ भी करने की इच्छा नहीं रहती है। और जब मन हमारा डल हो जाता तो बाद में उसकी कोई एनर्जी, उसकी शक्ति बढ़ती नहीं है। इसलिए हमेशा कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी करते रहना चाहिए, उससे हमारे जो मन की शक्ति है वो डेवलप होती है। इसके साथ साथ पॉजिटिव थिंकिंग, हर एक के सामने कोई ना कोई समस्याएं, कोई ना कोई बातें आती हैं और हर एक बात के दो पहलू होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। लेकिन हमें क्या लक्ष्य रखना है, हर बात को पॉजिटिव वे में लेना, क्योंकि हर बात में दोनों ही पहलू होते हैं, उसमें अच्छी बातें भी होती हैं तो कुछ बातें बुरी भी होती हैं। तो हमारा लक्ष्य हो कि उसमें अच्छी बातों को लेना, यदि अच्छी बातों को हम लेंगे, उस पर चिंतन करेंगे, उसको अप्लाई करेंगे तो इससे हमारे मन की एकाग्रता बढ़ती रहेगी। एकाग्रता के लिए दूसरी एक बहुत सुंदर एक तरीका है, पहेलियां सॉल्व करना, पहेलियां सॉल्व करना, पजल्स। तो जो जिनको ये आदत होती है पजल्स सॉल्व करने की, उनकी एकाग्रता अच्छी रहती है, क्योंकि उस समय मन उसमें इतना इन्वॉल्व होता है जो और बातों का उसमें कोई विचार ही पैदा नहीं होता है। तो इसलिए जो भी इस अपने ब्राह्मण संसार में भी कई पजल्स आते हैं, एक पत्रिका में आते हैं, उनको सॉल्व करने की भी अगर रुचि हो, ओम शांति मीडिया में शायद आते हैं, तो उनको सॉल्व करने की यदि हमारी इच्छा है, यदि हमारा लक्ष्य है, तो उससे भी हमारी एकाग्रता बढ़ती रहेगी। अगले पॉइंट है विजुलाइजेशन, एक स्थान पर बैठ करके दूसरे स्थान को देखना। जैसे कि हम वर्तमान समय यहां बैठे हुए हैं, तो यहां बैठे बैठे चार धाम की यात्रा करना, यहां बैठे बैठे हम परम धाम में पहुंच करके परम धाम को देखें कि बाबा कहां बैठे हुए हैं और उनके साथ साथ आत्माएं कहां कहां बैठी हुई हैं और परम धाम में आत्माएं कैसे टिकी हुई है बिना कोई वेश पर। तो इस प्रकार से हम एक जगह बैठ करके अन्य स्थानों को देखना, यहां बैठे बैठे सूक्ष्म मतन को देखना कि वहां बाप दादा वर्तमान समय क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे होंगे, यहां बैठे बैठे संसार के अन्य स्थानों को देखना, सेवा केंद्रों को देखना, या यहां बैठे बैठे और कहीं पर भी चला जाना, तो इससे भी हमारी एकाग्रता बढ़ती है क्योंकि वहां पर मन बुद्धि दोनों एक साथ कार्य कर रहे होंगे। आंखें बंद करके अपने कमरे में या जहां हम सेवा करते हैं वहां जाकर देखना, क्योंकि वहां जब हम जहां रहते हैं वहां हम शायद हर चीजों को नहीं देखते हैं कि कहां क्या है, लेकिन यहां बैठ के हम जाकर देखेंगे तो शायद हमको ज्यादा मालूम पड़ेगा कि कहां कौन सी चीज कहां रखी हुई है और समय पर हम उसको यूज भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ एकाग्रता के लिए टाइम टेबल बनाना, मन का टाइम टेबल, कि हमें अपने मन को कब कहां और कैसे यूज करना है, कहां उसको बिजी रखना है, तो इससे भी हमारे मन की एकाग्रता बढ़ेगी। तो अपने मन का टाइम टेबल बनाना, यह भी हमारी एकाग्रता को बढ़ाने का एक तरीका है, उपाय है, विधि है। और कौन कौन सी विधियां होंगी? दृढ़ता। दृढ़ता से क्या होगा? एकाग्रता आएगी कि हमें जिस जो भी हमें कार्य करना है, हम कोई लक्ष्य रहते हैं, उसके प्रति हमारी दृढ़ता हो। जहां दृढ़ता होगी वहां पर एकाग्रता स्वतः ही बढ़ती रहेगी। अपने से क्वेश्चन करना, उससे हमारी एकाग्रता बढ़ेगी। अपने आप से बातें करना, मन प्रश्न पूछे और बुद्धि उसका उत्तर दे, जवाब दे, तो इससे हमारी एकाग्रता बनी रहेगी। क्योंकि मन बुद्धि दोनों ही बिजी रहेंगे, उनको बाहर भटकने का कोई भी चांस नहीं मिलेगा। हाँ जी, क्लीन और क्लियर मन, मन को साफ और हल्का रखना है, स्वच्छ रखना है। इसके साथ साथ योगाभ्यास, जो हम सभी के लिए डेली का पुरुषार्थ है। हाँ जी, मन हम कोई भी कार्य करते हैं, लक्ष्य रखते हैं, तो उसमें दिल से कष्ट नहीं होना है। जो लक्ष्य रखा है उसमें हमें आशावादी बनकर रहना है, होप रखना है कि जो हमने लक्ष्य रखा है उसको हम अवश्य पूरा करेंगे। तो बाबा कहते हैं अपने मन को एकाग्र करने के लिए जो हमारे जो गुण हैं, जो शक्तियां हैं, उनको अनुभव में लाना है। तो जब भी हम योग करते हैं, योगाभ्यास करते हैं, उस समय केवल हम ऐसे ही बिना लक्ष्य के ना बैठे, उसमें कोई ना कोई गुण, कोई ना कोई शक्ति को लेकर के बैठे कि हमें इस शक्ति, इस गुण की अनुभूति करनी है, महसूस करना है। तो जहां महसूसता होगी वहां मन की एकाग्रता स्वतः ही बढ़ती रहेगी। तो ये हमने कुछ बातें देखी जो जिसको अप्लाई करने से हमारी मन की एकाग्रता बढ़ेगी। इसके साथ साथ कुछ ऐसी बातें हैं जो हमारे मन की एकाग्रता को भंग करती हैं, तो उस पर भी हमें कार्य करना जरूरी है। नहीं तो इस ब्राह्मण जीवन में हम एक तरफ पुरुषार्थ करते हैं कि मनोबल जमा करने का, स्वपुरुषार्थ से, ज्ञान योग से, तपस्या से हम शक्ति जमा करते हैं, और दूसरी ओर हमारे में कोई ना कोई एक ऐसी आदत होती है, कोई ना कोई लीकेज, कोई ना कोई फॉल्ट होती है, जिससे हमारी सारी शक्ति खत्म होती रहती है। तो इसलिए हमें यह भी लक्ष्य रखना है कि हमारे मन की एकाग्रता को भंग करने वाली कौन कौन सी बातें हैं, उनको जानना, समझना, उन्हें खत्म करना वो भी आवश्यक है। तो मन की एकाग्रता को भंग करने वाली कौन कौन सी बातें? मोबाइल, इंटरनेट। क्योंकि इंटरनेट एक ऐसा साधन है कि उसमें प्रवेश करना तो आता है लेकिन उससे निकलना नहीं आता है। इसलिए मोबाइल को यूज करना, नेट को यूज करना, एक विशेष लक्ष्य को लेकर के उसको यूज करना है, बिना लक्ष्य के नहीं। यदि हम उसको वैसे ही यूज करते रहते हैं तो उससे बाद में हमारी आदत पड़ जाती है, और उससे हमारे जो हम ज्ञान योग करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, या सेवाओं से, दुआओं से जो हम शक्ति जमा करते हैं, वो हमारी शक्ति को खत्म कर देगा। उस समय होते एकाग्र, लेकिन बाद में तो पहली बात है कि जो साइंस का साधन है, मोबाइल है, इंटरनेट है, उसको उस पर हमारी पूरी कंट्रोल हो, निगरानी हो, कि उसमें हमारा समय, हमारी एनर्जी वेस्ट ना हो। दूसरी बात है अनावश्यक इच्छाएं। अनावश्यक इच्छाएं, हर एक के मन में बहुत सारी इच्छाएं पैदा होती है कि हम ये भी करें, वो भी करें, बहुत कुछ करना चाहते हैं, बहुत कुछ पाना चाहते हैं। यह संसार के बहुत सारी सुख सुविधाएं, आशाएं हैं, उम्मीदें हैं, उनको पूरा करना चाहते हैं, लेकिन वो सभी इच्छाएं, आशाएं, उम्मीदें यदि पूरी होंगी तो हमारे जो ब्राह्मण जीवन की जो आशाएं, इच्छाएं, वो अधूरी रह जाएंगी। इसलिए हमें देखना है कि जो सांसारिक इच्छाएं हैं वो हमारे मन में इच्छाएं बहुत ना हो। इच्छा क्या हो? अच्छा बनने की इच्छा हो। अच्छा बनने की इच्छा हो। तो बाबा कहते हैं जो आपकी आवश्यकताएं हैं वो अवश्य पूरी होंगी, लेकिन आपकी जो इच्छाएं हैं वो इच्छाएं पूरी नहीं होंगी। दूसरी एक बात है मल्टीटास्किंग की हैबिट। कईयों की आदत होती है कि एक साथ बहुत सारे कार्य करना चाहते हैं, क्योंकि हर एक को ये ज्ञान है और ये इसका आभास भी है कि ये संगम योग जो है वो
बहुत ही मूल्यवान है। तो संगम युग में हम जितना अधिक करेंगे उतना हमको अधिक मिलेगा। तो सोचते हैं कि हम एक साथ बहुत सारे कार्य करें, लेकिन इससे होता क्या है, एक भी कार्य पूरा नहीं होता है। ना स्वयं संतुष्ट होते हैं, ना दूसरी आत्माएं संतुष्ट होती हैं। ये और एक सरदर्द का कारण बन जाता है, स्वयं के लिए भी औरों के लिए भी। तो एक साथ कई कार्य करने का लक्ष्य न रखें, ये भी एक बहुत जो व्यक्ति एक साथ कई कार्य करने का लक्ष्य रखते हैं और करते भी हैं, लेकिन जब वो योग में बैठते हैं उसमें उनकी स्थिति क्या होती है, उनका मन एकाग्र नहीं होता है, यहां वहां भटकता रहता है। क्योंकि क्योंकि होता क्या है कि हम जब एक साथ कई कार्य करते हैं और जब उनसे दूसरी आत्माएं संतुष्ट नहीं होती हैं, तो उन आत्माओं से बद्दुआएं निकलती हैं और फिर वो बाद में हमारे मन को इफेक्ट करती हैं। तो इसलिए हमें लक्ष्य रखना है कि हमें बहुत सारी कलाएं तो सीखनी है, लेकिन एक साथ बहुत सारे कार्य नहीं करने हैं। जैसे कि कोई बड़ा प्रोग्राम हो, मेहमानों को इन्वाइट करें, तो कोई व्यक्ति यदि चाहता है कि हम स्टेज पर सब कुछ करें, मुख्य वक्ता भी हम बने, स्टेज का संचालन भी हम करें और जो हमारे विशेष गेस्ट आने वाले हैं उनको भी हम वेलकम करें, तो ये सारे कार्य कोई एक व्यक्ति से हो पाना पॉसिबल नहीं है। ये सारी विशेषताएं सारी योग्यताएं एक में होना अच्छा जरूरी है, लेकिन सारे कार्य एक साथ करना कर सकना ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए एक साथ बहुत सारे कार्य करना ये हमारी आदत ना हो। अगली पॉइंट है, बाबा कहते हैं जो भी विकार हैं वो सभी विकार क्या करते हैं, हमारे मन को भटकाते हैं, चाहे काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार, जो भी विकार, जहां भी विकार है वहां पर मन की एकाग्रता भंग होती है। तो हमें देखना है कि हमने जो हमारे अंदर जो विकार हैं उनका अंश और वंश, जो बाबा कहते हैं यदि आप में किसी विकार का अंश होगा तो वो भी आपके मन को भटकाएगा। तो हमें लक्ष्य रखना है कि उनसे उन विकारों से अपने आप को आहिस्ते आहिस्ते अपने को दूर रखना है। एक दूसरी बात है नींद का अभाव, नींद की कमी। इस ब्राह्मण जीवन में हम चाहते हैं कि हमारी एकाग्रता बढ़े, तो लेकिन यदि हम नींद कम करते हैं और हम चाहते हैं कि हम 8 घंटा योग, अच्छा योग करें, लेकिन अगर नींद हमारी कम हो रही है तो हमारे वो जो हमारा लक्ष्य है, पुरुषार्थ है 8 घंटा याद का, या और भी हमारा जो पुरुषार्थ है, हम उसमें सक्सेस नहीं हो सकेंगे, क्योंकि मन हमारा एकाग्र नहीं होगा। नींद के अभाव में हमारा जो शरीर है, जो फिजिकल एनर्जी है, वो उससे खत्म होती है। नींद के अभाव से शरीर बीमार पड़ता है। यदि शरीर अस्वस्थ है, हम नींद नहीं कर रहे, हमारा ब्रेन एक्टिव नहीं है और हम चाहते हैं कुछ करें, तो उसमें हम वो कार्य नहीं कर सकते हैं, उसमें सफल नहीं हो सकेंगे। इसलिए कोई भी कार्य करने के लिए या एकाग्रता के लिए हमारा मन, हमारा जो ब्रेन है वो शक्तिशाली हो, उसके लिए नींद का होना आवश्यक है। तो ऐसा नहीं कि नींद हम कम करें, हम लक्ष्य रखें कि नींद कम करके और हम अच्छा पुरुषार्थ कर सकें, तो अच्छे पुरुषार्थ के लिए, मन की एकाग्रता के लिए पर्याप्त नींद का होना भी आवश्यक है। अगले पॉइंट है लीकेज। इस ब्राह्मण जीवन में हमें देखना है कि हमारे जीवन में कहां कहां लीकेज है, क्योंकि हम पुरुषार्थ करके जो एनर्जी जमा करते हैं, साथ साथ हमने कहीं कोई लीकेज भी बना के रखी हुई है, तो जो हमारी एनर्जी हम जमा करते हैं वो खत्म होती रहेगी। तो मन की एकाग्रता के लिए हमारी शक्ति जमा रहे और ये बढ़ती रहे, उसके लिए हमें अपने जीवन में कि कहाँ कहाँ हमारे जीवन में लीकेज है उसको जानना भी आवश्यक है और उस लीकेज को बंद करना है, तभी हमारे मन की एकाग्रता बढ़ सकेगी। और कौन कौन सी बातें होंगी, जो हमारे मन की एकाग्रता को भंग करते हैं, चटपटा भोजन, उससे क्या होता है? उससे तो एकाग्रता बढ़ती है। मन का मन आसक्ति ना हो, जहां आसक्ति होगी वहां मन भटकेगा, और मन भटकेगा तो फिर एकाग्रता हमारी भंग होगी। तो भोजन के प्रति आसक्ति ना हो, जिससे कि हमारा मन बार बार उसके प्रति भागता रहे। बाकी शरीर के लिए स्वादिष्ट या पौष्टिक भोजन होना आवश्यक है। यदि शरीर को पर्याप्त विटामिन्स नहीं मिलेगी, तो क्या करना पड़ेगा? फिर कोई ना कोई मेडिसिन का सहारा लेना पड़ेगा। शरीर को यदि पौष्टिक आहार नहीं मिलता है तो कोई ना कोई मेडिसिन का सहारा लेना पड़ेगा। इसलिए शरीर को स्वस्थ रखने के लिए पौष्टिक आहार होना आवश्यक है। ऐसा नहीं कि हम चाहें कि कुछ भी चलेगा। मन को भटकाने वाली एक दूसरी आदत है फैशन। संसार में वर्तमान समय फैशन का बोलबाला है। तो संसार में जो फैशन है वो हमारे मन को विचलित करती है, क्योंकि संसार में ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं, विशेषकर फिल्म इंडस्ट्री, जो समय प्रति समय भिन्न भिन्न प्रकार के जो फैशंस हैं वो उसको क्रिएट करती रहती है, जिससे लोगों में एक उत्सुकता बढ़े, लोगों की इच्छाएं जागृत हों। लेकिन इस ब्राह्मण जीवन में हमें अपने मन की एकाग्रता को बढ़ाना है, तो संसार में जो भी फैशंस हैं उनसे हमें कंट्रोल करना है, उनके प्रति मन को भटकाना नहीं है। तो इससे हमारा मन भटकेगा नहीं और मन की एकाग्रता बढ़ती रहेगी। गॉसिप्स जो मन के लिए बहुत रुचिकर होती है, बैठ करके आपस में गॉसिप्स करना टाइम पास करने के लिए, इससे टाइम पास तो होता है लेकिन हमारी एनर्जी इससे खत्म होती है। तो बैठ करके आपस में गॉसिप करना, दूसरों के बारे में व्यर्थ चिंतन करना, सोचना, हंसी मजाक करना, ये थोड़े समय के लिए खुशी तो देती है लेकिन लंबे समय का जो हमारा जो पुरुषार्थ है, भाग्य है, जो हमारी शक्ति है, वो खत्म कर देता है। और कौन कौन सी बातें हैं कि हमारे एकाग्रता को भंग करती हैं? कल्पना करना, इमेजिनेशन, फैंटेसीज, जो भी सांसारिक फैंटेसीज हैं यदि उनमें मन बार बार भाग रहा है तो उससे भी हमारी मन की एकाग्रता भंग होती है। तो हमें इमेजिनेशन करनी है, लेकिन बाबा ने जो हमें विधि बताई हुई है कि परम धाम को इमर्ज करो, सत्ययुग को इमर्ज करो, वहां जाकर के उसका एंजॉय करो। बाकी सांसारिक जो फैंटेसीज है वो इमर्ज नहीं करनी है, क्योंकि वहां जहां वो इमर्ज होगी वहां पर हमारे मन की शक्ति भंग होगी, मन की एकाग्रता भंग होगी। तो ये बहुत सारी बातें हैं, यदि हम इन सब बातों को जीवन में अप्लाई करते हैं, अमल में लाते हैं, तो जो हम चाहते हैं कि हमारी एकाग्रता बढ़ती रहे और उसके माध्यम से हमारा पुरुषार्थ अच्छा हो, हम ब्राह्मण जीवन में तीव्र गति से आगे बढ़ें, सफलता को हासिल कर सकें, सर्व सिद्धियां प्राप्त कर सकें, उसमें हम सफल होंगे। ओम शांति।